अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा बेंगलुरु स्थित आश्रम वृंदावन में 6 मई 2000 को दिए गए दिव्य संभाषण के एक भाग का अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध श्री सत्यसाई स्पीक्स भाग 33 से लिया गया है।
ईश्वर की अम्मा माँ ईश्वर अम्मा। आज हम ईश्वर अम्मा दिवस मना रहे हैं। ईश्वर अम्मा कौन है? वो ईश्वर की माता हैं। उनका ये नाम उनके माता पिता ने नहीं रखा था, बल्कि उनकी शादी के बाद कुंडम राजू अपने प्रज्ञान और दूरदृष्टि के चलते उन्हें इस नाम से पुकारते थे। जन्म के समय उनका नाम नामगिरी अम्मा रखा गया था, किंतु कुंडम राजू ने उन्हें बताया कि ईश्वर अम्मा उनके लिए सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत ही जल्द ईश्वर की माता बनने वाली थी। ईश्वर अम्मा का जन्म इतने निर्धन परिवार में हुआ था कि उनके परिवार को पेट भर भोजन भी दुर्लभ था। सिर्फ रागी संकटी खाकर ही वे गुजारा करते थे। मैं भी रागी संकटी ही खाता हूं। कर्नाटक में बहुत सारे लोग रागी संकटी खाकर जीवन यापन करते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे साग भात या सांभर भात उतने प्रिय नहीं हैं, लेकिन मूंगफली की चटनी के साथ रागी संकटी मेरा मनपसंद भोजन है। रागी और मूंगफली ये दोनों ही हमारे गांव में उपलब्ध हैं। ईश्वर अम्मा ने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जब मैं आजकल के पढ़े लिखे लोगों को अहंकार, दुर्बुद्धि और दुर्गुणों से भरा हुआ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ ईश्वर अम्मा की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। जब मैं 7.5 साल का था, तो गांव के बच्चों को पंढरी भजन गीत सिखाया करता था। मुझे पंढरी भजन गीत गाते और उन पर नाचते देखकर ईश्वर अम्मा और सुब्बम्मा बहुत प्रसन्न हुआ करती थी। उनके पति पेद्दा वेंकम राजू घर के कामों के लिए ईश्वर अम्मा को कभी कभी कुछ पैसे दिया करते थे। एक बार उन पैसों में से 2 आने शेष रह गए। उस जमाने में 2 आने से 2 बैग भर के मुरमुरा खरीद सकते थे, तो ईश्वर अम्मा ने उन 2 आनों से 2 बैग भरकर मुरमुरा खरीदी और बच्चों में बांट दी। वे हमेशा ही अपने पास जो कुछ भी रहता था उसे दूसरों में बांट दिया करती थी। वे त्याग की प्रतिमूर्ति थी। उनसे जो भी मिलने आता था, वे उनसे हमेशा प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती थी। जब कुछ भक्तगण ये सोचकर दुखी हो जाते थे कि स्वामी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वे हमेशा ही उनको समझाकर हौसला बढ़ाते हुए कहती थी कि स्वामी जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। जब मुझे उच्च शिक्षा के लिए उर्वकोंडा ले जाया जा रहा था, तब गांव के वे सभी बच्चे जिन्हें मैं शाम को रोज कुछ न कुछ सिखाया करता था, बड़े दुखी थे। चलते समय उनमें से 10 बच्चे मेरे पास आए और उन सब ने 3-3 पैसे एक एक करके मुझे गुरु दक्षिणा स्वरूप दिए। मैंने वे ईश्वर अम्मा को दे दिए। ईश्वर अम्मा की आंखों में आंसू झलक आए और वे खुशी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, इतनी छोटी आयु में भी त्याग का कितना भाव है तुम में। उन्होंने मरते दम तक उन पैसों को संभाल के रखा था। पहले मैं सुब्बम्मा के ही घर में रहता था, लेकिन जब भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो एक नया मंदिर बनवाया गया। एक दिन जब मैं भोजन कर रहा था, तो ईश्वर अम्मा आईं और उन्होंने किसी और को अंदर आने से मना कर दिया और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझसे बोली, स्वामी हमारे गांव में एक भी चिकित्सालय नहीं है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों के बीमार हो जाने पर उनकी माताओं को उन्हें उठाकर बुक्कापट्टनम तक ले जाना पड़ता है। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। मेरे लिए मेरे बच्चे और दूसरों के बच्चे एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल खुलवा दीजिए। मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उनकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। और फिर गांव में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय मैंने खुलवा दिया, जिसका उद्घाटन उस समय के केंद्रीय मंत्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी के हाथों हुआ। ईश्वरम्मा बहुत खुश हुई। खुशी के मारे उन्हें पूरे दिन भूख प्यास कुछ नहीं लगी। उन्होंने कसकर मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपनी खुशी जाहिर की। मैंने उनसे कहा, बी हैप्पी, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। कुछ समय बाद वे पुनः मेरे पास आईं और गांव में एक पाठशाला खुलवाने की प्रार्थना की। उनकी इच्छानुसार मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल भी गांव में खुलवा दिया। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। स्कूल जाकर उन्होंने सब बच्चों से प्रेम से मिलकर अपनी तसल्ली की। उन्होंने खुशी से मेरी तरफ देख के कहा, इस कलयुग में तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, मेरी सारी इच्छाएं तुमने पूरी कर दी। फिर उन्होंने गांव में पेयजल की समस्या को लेकर इच्छा जाहिर की, तो मैंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं इसका निराकरण भी कर दूंगा। पानी की समस्या से निपटने के लिए गांव में बोरवेल खुदवाए गए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही वे सूख जाते थे। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा सा कुआं पुराने मंदिर के पास खुदवाने का निश्चय किया। यद्भावम तद्भवति, जैसे विचार होते हैं उनकी परिणति भी वैसी ही होती है। मेरा इच्छा भाव सही था, इसीलिए परिणाम भी अनुकूल आया। मात्र 7 फीट की गहराई पर ही कुएं से पानी निकलने लगा। मंदिर के पछीते की तरफ लोगों के पानी भरने के लिए एक प्रवेश द्वार बनवा दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, तुंगभद्र नदी की सहायता से स्वामी ने पूरे अनंतपुर जिले के लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की है। इस कार्य परियोजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आई। ईश्वरम्मा की ये तीनों इच्छाएं उनके सामने ही फलीभूत हो गईं। हमारे संस्थानों में किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। शिक्षा हर किसी के लिए पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। हमारे चिकित्सालयों में उपचार भी एकदम निशुल्क उपलब्ध है। आजकल हृदय के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 2-3 लाख रुपए फीस वसूलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें पैसे मिलने चाहिए, लेकिन वसूली की भी तो एक सीमा होनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतवासी भोजन, दवाएं और शिक्षा बेच रहे हैं। वे तो अपने आप तक को बेच रहे हैं। भारत एक पुण्य स्थली है, ये त्याग और तपस्या की भूमि है, लेकिन ये सांसारिक सुखभोग की भूमि में परिवर्तित होता जा रहा है। त्याग की भावना परमावश्यक है। तुम्हारे पास जो भी है उसे हमेशा दूसरों के साथ बांटो। भोजन का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। अगर एक गिलास पानी से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है, तो पूरी गंगा नदी के लिए लालायित होने की क्या आवश्यकता है। लालच जैसे दुर्गुणों को अपने अंदर विकसित मत होने दो, अन्यथा जो हाल दुर्योधन और अन्य कौरवों का हुआ था, वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। अपने हृदय को प्रेम से भर लो।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। इसके अंतर्गत श्री सत्यसाई स्पीक्स भाग 33 से लिए गए एक भाग का अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था।